मोक्षमार्गसिनीतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आहा विषय निबंधो विधृतो मत्यादीनाम मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों के विषय को निश्चित किया जा चुका है। इदंतु न निर्ज्ञातम एकस्मिन् नात्मनि स्वनिमित्त सन्निधानोपजनित वृत्तीनि ज्ञानानि योगपद्येन कति भवन्ति इत्यत आह। ये निश्चित नहीं हो पाया कि एक आत्मा में अपने निमित्त के सन्निधान में उत्पन्न होने वाले ये ज्ञान, ज्ञानों का जो निमित्त होता है इसमें क्षयोपशमिक ज्ञान का अंतरंग निमित्त क्षयोपशम होता है और क्षायिक ज्ञान का निमित्त क्षय होता है, तो अपने निमित्त के सन्निधान में उपजनित हुई है अर्थात उत्पन्न हुई है वृत्ति परिणति जिनकी, ऐसे ज्ञानानि ये पांच ज्ञान योगपद्दीन एक साथ एक आत्मा में कितने होते हैं? मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान एक जीव में एक साथ कितने हो सकते हैं? तो अभी बता रहे अतः उच्यते, इसलिए कहते हैं एकाधीन भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक को आधी ले लो कम से कम एक होगा, फिर उससे अधिक करो तो दो भी हो सकते हैं, उससे अधिक करो तो तीन भी हो सकते हैं और उससे अधिक करो तो चार भी हो सकते हैं। आ चतुर्भ्यः ये पंचमी का प्रयोग है कि चार तक के हो सकते हैं, पांच क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि क्षयोपशम के साथ क्षय नहीं होता, क्षय के साथ क्षयोपशम नहीं होता, तो जहां क्षयोपशमिक ज्ञान है वहां क्षायिक नहीं होगा और जहां क्षायिक है वहां क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकता। तो अगर एक ज्ञान हो किसी के पास, कोई भी जीव के पास अगर एक ज्ञान हो तो वो कौन सा होगा? तो आचार्य कहते हैं एकम तावत केवल ज्ञानम, अकेला रहने वाला तो सिर्फ केवल ज्ञान है और कोई ज्ञान अकेला नहीं रह सकता। और आचार्य अकलंक देव ने इस विषय में एक और विकल्प दिया है कि जिस जीव के पास आगम ज्ञान नहीं है पर वो सम्यक दृष्टि है तो उसके पास अकेला मति ज्ञान होता है। अब वो श्रुत ज्ञान यानी श्रुत का अर्थ वहां आगम लेकर के उन्होंने बोला कि वो आगम ज्ञान ना होने से अकेला मति ज्ञान है, पर वैसे देखो तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो हमेशा चलते ही रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के पास ये दो ज्ञान तो कम से कम होते ही हैं, तो वो विवक्षा से उन्होंने ऐसा कथन किया है। तो एक हुआ तो केवल ज्ञान, तेन सह अन्यानि क्षयोपशमिकानि युगपत् न अवतिष्ठन्ते, उस केवल ज्ञान के साथ क्षयोपशमिक ज्ञान अवस्थित नहीं रह सकते। द्वे दो ज्ञान अगर होंगे तो कौन से होंगे? मति श्रुते मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे। त्रीणि तीन कौन से हो सकते हैं? तो सब लोग एक सरल भाव से जवाब देते हैं मति श्रुत और अवधि। आचार्य कहते हैं कि त्रीणी मतिश्रुतावधि ज्ञानानि मतिश्रुत मन परे ज्ञानानि वा, तीन अगर ज्ञान हो एक साथ तो फिर मतिश्रुत और अवधि भी हो सकते हैं और मतिश्रुत और मन परे भी हो सकते हैं। कोई ऐसे मुनि महाराज हैं जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मतिश्रुत और मन परे ज्ञान है, तो ये भी संभव है। चत्वारि मते श्रुतावधि मनः पर्यय ज्ञानानि, चार होंगे तो वो चार होंगे ही, चारों क्षय उपशमय ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान। न पंच संति केवलस्या सहायत्वात्, पांच एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि केवल अकेला ही रहता है, केवल ज्ञान उसका नाम ही केवल है, मैं केवल मैं रह गया बाकी सब चले गए, केवल ज्ञान यही कहेगा ना, क्योंकि जितने क्षयोपशम ज्ञान थे वो जब चले जाते हैं तभी तो क्षय ज्ञान होता है। यथोक्तानि मत्यादि ज्ञान व्यपदेश मेव लभन्ते उत अन्यथा पीत्यतः। ये जो पांच ज्ञान बतलाए हैं आपने, क्या ये पांच हमेशा ज्ञान रूप ही होते हैं या फिर उससे उल्टे भी हो सकते हैं, अन्यथा भी हो सकते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधि ये तीन जो ज्ञान थे ये उल्टे भी होते हैं, ये विपरीत भी होते हैं। विपर्य विपरीत का अर्थ क्या हो गया? मिथ्या। तो मिथ्या मति ज्ञान, कुमति ज्ञान अथवा मत्य ज्ञान, मत्य एवरणो यमसवर्णे न च परो लोपेक्स, व्याकरण का सूत्र है संधि का, कि अगर किसी शब्द के अंत में ई है और उसके पश्चात जो भी कुछ आ रहा है उसमें अगर ई के अलावा कोई आ जाए, ई अथवा ई इन दोनों से भिन्न कोई स्वर आता है तो फिर यम ई का य बन जाता है। जैसे इति और आदि, इनकी संधि करें इत्यादि, तो वो जो इति में ई था वो यह बन गया और आदि में जुड़ गया। तो यह हो जाता है, एकदम सरल उदाहरण दिया है, बच्चे बच्चों को समझ में आ सकता है। तो इत्यादि यह बन गया। तो मति ज्ञान, देखो मति और अज्ञान इनकी अगर संधि करें, मत्य ज्ञान, मत्य ज्ञान बनता है, ये शब्द आता है शास्त्रों में मत्य ज्ञान। कुमति ज्ञान तो बोलने के लिए सरल है लेकिन ये थोड़ा उच्चारण कठिन पड़ता है, मत्य ज्ञान। मति में अज्ञान का अ मिलाना पड़ता है तो य बना करके मिलता है मत्य ज्ञान। फिर श्रुत में अज्ञान को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? श्रुताज्ञान। श्रुत में त में अ है ही है तो अ में अ मिलाने से आ बन जाता है श्रुताज्ञान। तो मिथ्या मति ज्ञान के तीन नाम हो गए, एक तो मिथ्या मति ज्ञान, कुमति ज्ञान और मत्य ज्ञान। वैसे मिथ्या श्रुत ज्ञान के भी कितने नाम होंगे? मिथ्या श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और श्रुता ज्ञान। श्रुता आ की मात्रा हो जाएगी तो वो श्रुता ज्ञान का मतलब श्रुत अज्ञान रूप, अज्ञान वाला अ जुड़ेगा उसमें श्रुता हो जाएगा। फिर अवधि ज्ञान, मिथ्या अवधि ज्ञान, फिर कु अगर जोड़ते हैं तो व्याकरण के नियम से वो कथ बन जाता है, कथ का आदेश हो जाता है तो वो कदवधि ज्ञान होता है। कदावधि कदाचार, वो कु अवधि नहीं होता, कदावधि कदावधि ऐसा बन जाता है। और इसका तीसरा नाम विभंग ज्ञान भी है। विभंग वि यानी विरुद्ध और भंग यानी भेद, जो अवधिक ज्ञान का एक भेद, तो अवधिक ज्ञान का सम्यक ज्ञान रूप है, तो दूसरा मिथ्या ज्ञान रूप होगा, तो विभंग अवधि होगा। विभंग अवधि का मतलब विरुद्ध विकल्प वाला, विरुद्ध भेद वाला अवधि ज्ञान। तो ऐसे ये तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। को अवधि ज्ञान नहीं होता है, कदावधि होता है। कदावधि अब अगर किसी को अवधि ज्ञान बोलने की बहुत ज्यादा कामना हो तो फिर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता ना, न सरकार की तरफ से और न साधु समाज की तरफ से, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर को अवधि ज्ञान किसी को बोलना ही हो, जैसे क्या है कि एक शब्द आता है अधीन, अधिकांश लोग उसको आधीन बोलते हैं, और जो विद्वान है वो जानते हैं, संस्कृत को जानने वाले जो वास्तविक विद्वान है वो जानते हैं कि इसको ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है इसको, तो ये अधीन को आधीन बोल रहा है। आधीन तो संधि करने के बाद बनता है, स्वाधीन, पराधीन, आत्माधीन, यहां पर आधीन आधीन संधि करके बने। और अलग से अगर अधीन शब्द रखो तो फिर अधीन ही रहता है, वो आधीन नहीं होता। अब को अवधि अगर किसी को प्रिय है तो उसकी प्रिय वस्तु कौन छुड़ा सकता है, पकड़े रहो। कदावधि नाम है उसका, या फिर मिथ्या अवधि ज्ञान है, या विभंग अवधि है, ठीक है ना। कथ, कथ का आदेश हो गया, कु के लिए स्वर आने के कारण कथ का आदेश हो गया। अगर व्यंजन होता तो कु रहता, पर स्वर आने के कारण वो कथ का आदेश हो जाता, कोई भी स्वर आ जाए, हाँ नहीं, अ आता या ई आता, कुछ भी आता, तो वो कथ का आदेश हो गया। फिर त का, त की संधि करी स्वर के साथ तो त का द बन गया, तो इस तरह कदावधि बना है। कदाचार भी बनता है, बुरा आचरण कदाचार कहलाता है। अब यहां पर विपर्य यश्च क्यों लिखा है, तो विपरीत भी होते हैं, च का कभी कभी भी अर्थ में भी प्रयोग होता है। अपि में दो अक्षर हो जाते हैं, च में एक ही अक्षर से काम चल रहा था, तो विपर्ययश्च विपरीत भी होते हैं। अर्थात ये हुआ कि च यानी सम्यक भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। फिर प्रश्न कहते हैं, करते हैं यहां पर, कि इनमें विपरीतता क्या है, कैसे विपरीतता है ये। तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शनेन सहैकार्थ समवायात, उस आत्मा में मिथ्या दर्शन भी है और ये ज्ञान भी है, तो उनके मिथ्या दर्शन के साथ एक पदार्थ में इनका अस्तित्व होने के कारण ये कलुषित हो जाते हैं। किसके समान, तो देखिए उदाहरण बड़ा सुंदर दे रहे हैं, सरजस्क कटुकालाभुगत दुग्धवत। एक अलाबु फल होता है, तुम्बी जिसको बोलते हैं, कड़वी तुम्बी, हाँ उसको कन्नड़ में जो भी आप कहेंगे, उसके अंदर अगर आप दूध डाल देंगे तो दूध तो दूध ही है लेकिन उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। वैसे ही जिस आत्मा में मिथ्यात्व है तो वो आत्मा कड़वी तुमड़ी के समान है, और उसमें अगर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान हो तो वो विपरीत हो जाते हैं, सम्यक नहीं रह सकते। नच तथा मत्यक ज्ञानादीनाम विषय ग्रहण ही विपर्य है, लेकिन वो जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं वो ज्ञान, उसमें विपरीतता नहीं होती है। सम्यक दृष्टि भी सांप को सांप ही जानता है और मिथ्या दृष्टि भी सांप को सांप ही जानता है। तथा ही जैसे सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि भी रूपादीन उपलब्धे, जैसे सम्यक दृष्टि चक्षु आदि के द्वारा वर्ण आदि को जान लेता है, तथा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मत्यक ज्ञानी ने, देखिए यहाँ पर मत्यक ज्ञान है ना शब्द, वो मति रूप अज्ञान द्वारा रूप आदि को जान लेता, लाल रंग को सम्यक दृष्टि भी लाल ही जानेगा और मिथ्या दृष्टि भी लाल जानेगा। ऐसा तो नहीं है कि लाल रंग मिथ्या दृष्टि को पीला दिख जाए और सम्यक दृष्टि को लाल दिखता हो, ऐसा नहीं है। और यथाच सम्यक दृष्टि श्रुतेन रूपाधीन जानाति निरूपयति च, और जिस तरह सम्यक दृष्टि जीव शास्त्र के द्वारा रूप आदि को जान करके उनका वर्णन करता है, तथा मिथ्या दृष्टि अपि श्रुता ज्ञानेन, मिथ्या दृष्टि भी श्रुता ज्ञान के द्वारा वैसा काम कर सकता है। यथा चावधि ज्ञानेन सम्यक दृष्टि रूपेण रूपिणोत्थान अवगच्छति, जिस तरह सम्यक दृष्टि जीव अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जान सकता है, तथा मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानी नहीं थी, उसी तरह मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थ को जान सकता है। लेकिन अत्र उच्यते, यहाँ पर एक खास बात बतला रहे हैं, यहाँ एक कुछ कहा जाता है, सदसतोर अविशेषाद यदृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत्, ज्ञान में अंतर कहाँ पड़ रहा है, जब दोनों एक जैसा जान रहे हैं तो फिर अंतर कहाँ पड़ रहा है? तो आचार्य कहते हैं सत विद्यमानम, सत का अर्थ होता है जो उपस्थित है, विद्यमान है, असत अविद्यमान, असत यानी जो अविद्यमान है, जिसका अस्तित्व नहीं है। तयोर अविशेषेण यदृच्छया उपलब्धे ही विपर्यो भवति, जो विद्यमान और अविद्यमान दोनों के विषय में समान रूप से अविशेषात यानी समान रूप से जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसके कारण विपरीतता आ जाती है। कदाचित रूपादि सदप्यसदिति प्रतिपद्यते असदपि सदिति, मिथ्या ज्ञान जो होता है वह कभी कभी विद्यमान रूप को भी अविद्यमान रूप से ग्रहण करता है और कभी अविद्यमान को भी विद्यमान रूप से ग्रहण कर लेता है। कदाचित सत सदैव, कभी कभी विद्यमान को विद्यमान रूप से ही ग्रहण करता है, असद्यप्यसदैव इति, और अविद्यमान को अविद्यमान रूप से ही ग्रहण करता है। तो मिथ्या दर्शन उदयात अध्यवस्यति, मिथ्या दर्शन के उदय के कारण इस तरह से वो अपने परिणाम करता है, वो जानता है। यथा पित्तोदय आकुलित बुद्धिम बुद्धिर, पित्त के उदय से आकुलित है बुद्धि जिसकी, वो कभी मातारम भार्य थी भार्याम अभी माते थी मण्यते, कभी माँ को अपनी पत्नी मान लेता है, कभी पत्नी को माँ मान लेता है। यदृच्छया मन माने ढंग से मातरम माते ही वही थी भार्याम अपि भार्य ही वही थी च, और फिर कभी माँ को माँ और पत्नी को पत्नी ही जानता है। तदपि न तत् सम्यक ज्ञानम, तब भी अगर वो सही भी जान रहा है तो सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें दोनों विकल्प संभव है। एवं मत्यादि नाम अपि रूपादिषु विपर्ययो वेदितव्यः, इस तरह मति आदि ज्ञानों में भी रूप आदि के प्रति विपरीतता जान लेना। तथा ही उसका खुलासा कर रहे हैं, कश्चित मिथ्या दर्शन परिणाम आत्मन्यवस्थितः, कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम आत्मा में अवस्थित है, रूपाद्युपलब्धौ सत्यामपि, रूपादि की उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यासम भेदाभेद विपर्यासम रूप स्वरूप विपर्यासम च जनयति। अब देखो मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, उसने जो रूप आदि को जाना तो जाने हुए में विपरीतता मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न हो जाती है। जाना तो जो दिख रहा था वैसे ही जाना उसने, लेकिन मिथ्या श्रद्धान के कारण उसमें विपरीत निर्णय होते हैं। तो तीन प्रकार की विपरीतता होती है, ये महत्व का विषय है। एक पहला कह रहे हैं कारण विपर्यास, कारण विपर्यास यानी जो जिसका कारण नहीं है उसको उसका कारण मान लेना, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति आया, 3 बार हमारे आहार देखने आया, पर 3ों बार हमें अंतराय हुआ। तो उसने आकर के हमारे सामने एकदम उदास होकर के कहा कि महाराज, मेरे कारण अंतराय हो जाता है, मैं जब भी आता हूं तो आपको अंतराय हो जाता है। तो फिर हमने बोला कि दीक्षा से लेकर अब तक जो अंतराय हुए हैं, उनमें से 3 अंतराय आपके आने से हुए, और बाकी तो ये कारण विपर्यास होता है, यानी किसी चीज को किसी का कारण बैठाल देते हैं। तो ये चीज बहुत चलती है दुनिया में, वो जो भी है, लेकिन अगर उसको कारण मान लेने का मतलब विपर्यास है। कैसे कारण मान सकते हैं आप? कितने सारे कारण होते हैं। क्या कर्म का उदय उसमें कारण नहीं है? क्या दातार की असावधानी उसमें कारण नहीं है? क्या वहां का वातावरण उसमें कारण नहीं है? कुछ भी हो सकता है, कोई चीज उड़ के आ गई तो उसके आने से आई क्या? और मान लो ऐसा नहीं है कि उसने वो जब जब आया हो तब तब अंतराय हुए, 3 बार हुए, तो बाकी बार अगर उसके कारण से अंतराय होते तो वो चौथी बार पांचवी बार आ रहा है तब क्यों नहीं हो रहे है? या 3 बार आने से पहले जब आया था तब क्यों नहीं हो रहे है? या तो फिर वो अंतराय कराने की शक्ति उसके पास नहीं थी पहले, और बाद में 3 बार आया तब शक्ति लेकर क्या आया? ऐसा सब विचार करना पड़ता है, न्याय में ये सब बातें आती है विचार करने में। तो फिर कारण विपर्यास कहलाता है। जैसे यहां पर कह रहे हैं, कारण विपर्यास तावत रूपादीनाम एकम कारण मुहूर्तम नित्यम इति केचित कल्पयंती। कुछ लोग बोलते हैं कि जो रूप आदिक हैं उनका एक ही कोई अमूर्त कारण है, अपरे कुछ और क्या कहते हैं, पृथ्वी व्याधि जाति भिन्ना परमाणवश चतुस त्रि द्वेक गुणास तुल्य जाति या नाम कार्याणाम आरंभ का इति। पृथ्वी आदि की जाति से जो भेद को प्राप्त हैं, ऐसे अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं। पृथ्वी को बनाने वाले अलग परमाणु होते हैं, जल को बनाने वाले अलग परमाणु होते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। वे कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनमें 4 गुण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 गुण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 गुण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 1 गुण होता है। लेकिन वो तुल्य जाति या नाम कार्याणाम आरंभ का है, वो एक समान कार्यों के प्रारंभ करने वाले परमाणु होते हैं, उनकी रचना करते हैं। अन्य वर्णयन्ति, और तीसरे मत वाले क्या मानते हैं, क्या वर्णन करते हैं? तो बोले पृथ्वी व्याधि चत्वारि भूतानि, पृथ्वी आदि 4 प्रकार के भूत हैं, पंचभूतों में से 4 भूत ये पृथ्वी आदि है। तो भौतिक धर्म ये भौतिक गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्शाह, यानी पृथ्वी में गंध होती है, ऐसे इन्होंने चारों में अलग अलग गुण विभाजित किए हैं। एतेषां समुदायो रूप परमाणु अष्टक इत्यादि, इनका जो समूह है रूप परमाणुओं का अष्टक आदि है। इतरे वर्णयन्ति, और चौथे लोग और भी मत वाले क्या मानते हैं, पृथिव्यप तेजो वायवः काठिन्यादि द्रवत्याद्युष्णत्वाद् तीर्णत्वादि गुणा जाति भिन्ना परमाणु कार्यस्य आरम्भकः। अलग प्रकार की जातियों के परमाणु होते हैं, कठिनता देने वाले परमाणु पृथ्वी को बनाते हैं, तरलता देने वाले परमाणु जल की रचना करते हैं, उष्णता देने वाले परमाणु अग्नि की रचना करते हैं, और बहने वाले परमाणु हवा की रचना करते हैं। तो ये कारण विपर्यास हो गया। जैनाचार्य कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये अपने अपने नाम कर्म से उस तरह की आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके ये सभी औदारिक हैं, औदारिक देह वाले हैं, तो उस प्रकार का औदारिक शरीर बना लेते हैं। तो वैसे औदारिक शरीर जो है वो नाम कर्म के उदय से निष्पन्न होता है, और इनमें से ये चारों धातु भी कहलाते हैं। तो अगर कोई जीव शरीर छोड़कर चला जाए तो उसी शरीर में दूसरा जीव भी आकर के रह सकता है। जैसे जल है तो जल प्रासुक है, पड़ा हुआ है अथवा छना हुआ जल रखा है, तो एक कालावधि के बाद उसमें वापस जल का एक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि वो धातु है। लेकिन वनस्पति में ऐसा नहीं हो सकता, वनस्पति धातु नहीं है। तो वनस्पति में से अगर वनस्पति का एक जीव निकल गया तो दूसरा वनस्पति का एक जीव उसको अपना शरीर नहीं बना सकता, ये नियम है। फिर दूसरा क्या है, भेदा भेद विपर्यास, कारणात् कार्यम अर्थांतरभूतमेवेति अनर्थांतरभूतमेवेति च परिकल्पना। क्या सुंदर बात है, इसमें बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। जो लोग ये मानते हैं ना कि उपादान कारण ही एकमात्र कारण है, निमित्त तो वहां उपस्थित रहता है और निमित्त क्या कर सकता है बेचारा, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, निमित्त तो वराक है, ताकत है तो उपादान में है, ऐसी जो बात करते हैं वो एक तरह से उपादान का ही अपमान करते हैं। अब कोई पूछेगा कि ऐसा कैसे, वो तो निमित्त के बारे में ऐसा कथन कर रहे हैं कि निमित्त क्या वस्तु है, सब कुछ उपादान से होता है, तो वो उपादान का अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो निमित्त है वो भी एक द्रव्य है। तो अगर उसकी शक्ति को गौण किया जाता है, उसकी शक्ति को नगण्य समझा जाता है, तो फिर एक द्रव्य शक्तिहीन हो गया और एक द्रव्य शक्तिमान हो गया। तो इस तरह से दो द्रव्य हो गए, ऐसी मान्यता में दो प्रकार के द्रव्य हो गए, एक शक्ति संपन्न उपादान द्रव्य और एक शक्तिहीन निमित्त द्रव्य, एक कर्ता उपादान द्रव्य और एक अकर्ता निमित्त द्रव्य। विचारने की बात यह है कि एक द्रव्य शक्ति संपन्न और दूसरा द्रव्य शक्तिहीन कैसे हो सकता है। जैन सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न है, और अगर आपने एक द्रव्य को शक्तिहीन समझ लिया तो आपने जैन वस्तु व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। निमित्त किस अपेक्षा से अनंत शक्ति संपन्न है, अभी हम उसके दृष्टांत भी देते हैं आपको तो बात स्पष्ट हो जाएगी। किस अपेक्षा से शक्ति संपन्न है, स्वचतुष्टय में जाकर के देखो आप, निमित्त कोई भी द्रव्य है, निमित्त है, मान लो जैसे अग्नि निमित्त है भोजन पकाने में, उसको अगर अग्नि को आप उसमें देखेंगे अग्नि में, तो फिर उसका द्रव्य उसका क्षेत्र उसका काल और उसका भाव उसको अगर आप देखेंगे तो अनंत शक्ति संपन्न है वो, और उपादान भी अनंत शक्ति संपन्न है, निमित्त उपादान दोनों अनंत शक्ति संपन्न है, और दोनों एक दूसरे में कैसे सहकारी होते हैं, निमित्त को बलाधान कहते हैं, निमित्त को सहकारी कारण बोलते हैं, निमित्त को सहयोगी बोलते हैं, निमित्त को बाह्य कारण भी बोलते हैं। अगर वो कार्य में सहकारी नहीं होता तो कारण संज्ञा मिथ्या होती। अब कोई कहे कि नहीं वो व्यवहार से कारण संज्ञा है, तो ठीक है ना, निश्चय से तो कार्य कारण भाव एक ही द्रव्य में होता है, लेकिन व्यवहार से अगर वो कारण है तो क्या व्यवहार सर्वथा मिथ्या है? अगर व्यवहार को सर्वथा मिथ्या मानते हैं तो जिनेंद्र भगवान के वचन मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि व्यवहार नए किनने बदला है, व्यवहार नए का वर्णन कहां से आया? जिनेंद्र भगवान मोक्ष चले गए उसके बाद किसी खुरापाती दिमाग वाले ने बनाया क्या व्यवहार ने, किसी उपद्रवी ने बनाया क्या व्यवहार ने, या जिनेंद्र भगवान ने ही इन नयों का वर्णन किया था? उनके ही वचन थे, और व्यवहार निश्चय का प्ररूपक है, ये भी कहा है। व्यवहार नय के माध्यम से निश्चय का वर्णन होता है, तो फिर व्यवहार नय को मिथ्या कैसे कह सकते हैं? जो निश्चय का वर्णन करने वाला है वो मिथ्या कैसे हो जाएगा? व्यवहार निराधार नहीं होता। और जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कल, आपकी स्मृति में हो, कि उपस्थित वस्तु मात्र को निमित्त नहीं कहते। निमित्त का लक्षण क्या बतलाया आप्त परीक्षा में, कि जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता, वो निमित्त है। अब प्रश्न ये है कि अगर निमित्त इतना दुर्बल है, अगर निमित्त कुछ नहीं कर सकता, ये आत्मा की ही कमजोरी है कि सब उस संसार में भटक रहा है, कोई निमित्त आत्मा को नहीं भटका रहा है, तो प्रश्न है कि आत्मा की अगर कमजोरी है तो वो कमजोरी कहां से आ गई? आत्मा तो अनंत शक्तिमान है, निश्चय से तो आत्मा अनंत शक्तिमान है, ये कमजोरी शब्द आत्मा के साथ कहां से जुड़ा? आत्मा अपनी ही कमजोरी से भटक रहा है, ये जो वाक्य बनाया, तो ये अपनी ही कमजोरी आई कहां से? आत्म द्रव्य में ऐसे कमजोरी का वर्णन कहीं आया है कि आगम में कहीं निश्चय ने बताया कि आत्मा में कोई कमजोरी नाम की वस्तु होती है? मिथ्यात्व का उदय आत्मा को कमजोर बनाता है, स्वभावतः आत्मा कमजोर नहीं होती। मिथ्यात्व के उदय में उसका जैसा अनुभव होगा वैसा भाव उस जीव में उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। समझने की बात है। अगर आपकी आत्मा में अनंत शक्ति है और ये बात खारिज हो रही है कि आत्मा अपनी कमजोरी से भटक रहा है, वास्तव में कर्म के उदय के निमित्त को पाकर आत्मा के अंदर जो नैमित्तिक भाव उत्पन्न होता है कमजोरी रूप, वो नैमित्तिक भाव जीव की पर्याय है और निमित्त जो है वो पुद्गल की पर्याय है। आचार्य कुमार कार्तिकेय मुनि ने कार्तिकेय अनुपरीक्षा में एक गाथा लिखी है, काव्य अपुवादी सदि पुग्गल दब्बसेरिसी सति केवल नाण सहावो जीवस्य विनाशिदो जीने। कोई अद्भुत शक्ति पुद्गल द्रव्य के पास भी देखी जाती है, अकेले जीव की शक्ति मान करके पड़े मत रहना, पुद्गल में भी कोई अद्भुत शक्ति पाई जाती है जिस शक्ति के कारण जीव का केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट कर दिया जाता है। नासिदो जीण लिखा है, नाशित लिखा है, नष्ट नहीं लिखा है। नाशित का अर्थ होता है कारित संज्ञक, किसी के द्वारा नष्ट कराया जाता है, यानी पुद्गल जीव के स्वभाव को नष्ट करा देता है, तो फिर उसको आप क्या शक्तिहीन समझते हो? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व उदय अवस्था है उसकी। आप सम्यक दृष्टि बन के बता दो तो मानेंगे उपादान की शक्ति कितनी होती है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक तो प्राप्त कर लो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस उदय में इतना बल है कि उसका उदय जब तक रहेगा जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ये तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरा उदाहरण है कि चलो सम्यक दृष्टि हो गया कोई जीव, तो सम्यक दृष्टि हो गया तो काम बन गया क्या? कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना कि इस जीव ने सब कुछ प्राप्त कर लिया अनादिकाल से, लेकिन आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। ऐसा नहीं है। कौन कह सकता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया? हो सकता है प्राप्त किया हो। शास्त्रों में तो लिखा है गिण्णदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्ते असंख वाराओ, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को एक जीव असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है और छोड़ भी सकता है। तो ये कौन कह सकता है कि जीवों ने, किसी भी जीव ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया? नहीं कह सकता। ऐसे जीव हो सकते हैं कि जिनने आज तक प्राप्त ना किया हो। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है इस संसार में, लेकिन कई सादी मिथ्या दृष्टि भी तो है ना। कल हमारी बात हुई थी अनादि सादी अनंत, इसकी चर्चा हुई थी। तो सादे मिथ्या दृष्टि कौन कहलाता है बोलो। जो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया है, अर्थात जिसके मिथ्यात्व की आदि है, वो सादे मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे जीव भी होते। तो सारे के सारे जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि में, ऐसा कहना अशक्य है। अब बात यह है कि मान लो जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब तो बलवान हो गया उपादान नहीं। मिथ्या दृष्टि की तुलना में बलवान हुआ है, अभी वो सर्वशक्तिमान नहीं बना है। अगर बना हो तो फिर हम एक चुनौती देते हैं, आगम से ही देते हैं, कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, औपशमिक सम्यक दर्शन हो या क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनकर बता दे बिना निमित्त के। क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? दंसन मोह खवणा पठव गो कम भूमि जादो ही। दंसन मोह खवणा पठव गो कम भूमि जादो हो। मनुषो केवली मूले निठव गो चावि सब्वत। पहली बात, कोई भी सम्यक दृष्टि हो उसको मनुष्य होना होगा क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए। वो सर्वार्थ सिद्धि के अगर देव भी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो वहां से उनको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और कम्म भूमि जादू हो, मनुष्य भी कैसा हो, कर्म भूमि में जन्म लेने वाला हो, और कर्म भूमि में जन्म लेकर घर में बैठे बैठे क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा क्या? नहीं, केवल ही मूले। केवल ज्ञानी या श्रुत केवली, दोनों प्रकार के केवलियों के चरणों में आना होगा और क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी क्षायिक सम्यक दर्शन की। प्रारंभ होने के बाद वो प्रक्रिया टूटती नहीं है। आयु का बीच में अगर क्षय भी हो जाए, तो वो निठव को चावी सब चारों गतियों में कहीं भी चले जाए, वहां वो क्षायिक सम्यक दर्शन की विधि पूर्ण करके क्षायिक सम्यक दृष्टि ही बन जाएगा। ऐसा है। और क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपरांत इस जीव को अधिकतम चौथे भव में मोक्ष हो जाता है। इस भव को मिलाकर कम से कम उसी भव में मिल सकता है, और मध्यम में, तीसरे भव में। दूसरे भव में कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि मोक्ष नहीं जाते, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि को दूसरे भव में या तो देव गति मिलती है या नरक गति मिलती है, और मनुष्य तिर्यंच गति अगर मिले तो भोग भूमि में मिलती है। भोग भूमि में अगर मिल गई मनुष्य तिर्यंच गति, तो वहां व्रत नहीं हो सकते, अविरत अवस्था ही रहती है भोग भूमि में। ऐसा है। तो ये सारी चर्चाएं थोड़ी सी अपनी शास्त्रीय चर्चा थी, पर निमित्त और उपादान की बात निकली थी, इसलिए हम ये पूछ रहे थे कि अगर केवली और शुद्ध केवली न मिले तो क्या कोई इस क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य महाराज ने कहा है कि एक संभावना ऐसी है कि अगर स्वयं श्रुत केवली बन जाए, तो सम्यक दर्शन जो क्षायोपशमिक है उसको क्षायिक बना सकता है। ऐसा अवश्य लिखा हुआ है धवला में। स्वयं श्रुत केवली, 12 अंगों का ज्ञान अगर स्वयं हो जाए किसी जीव को, जैसे तीर्थंकरों को होता है, वो दीक्षा लेते हैं अंतर मुहूर्त में इतनी निर्मलता आती है, पूरे 12 अंगों का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे जीव, तीर्थंकर जैसे या गणधर जैसे जीव, उनको फिर क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। पर गणधरों को तो सानिध्य रहता है भगवान का, केवली का। पर जैसे तीर्थंकर है, उसमें उदाहरण दिया है निर्मल नाथ भगवान जो होने वाले हैं आगामी 24 में, जो 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके साथ ऐसे ही होगा, क्योंकि वो इस समय क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो फिर ये तो सब जानते हैं कि तीर्थंकर कोई जाएंगे नहीं किसी के पास, उनको कैसे क्षायिक होगा, तो बोले वो श्रुत केवल ही स्वयं बनेंगे और अपने ही पादमूल में अपने आप क्षय समय कृष्ण हो जाएंगे। तो भेदा भेद विपर्यास जो है, भेद में अभेद मान लेना, अभेद में भेद मान लेना, और वैसा एकांत ग्रहण कर लेना, देह और जीव एक ही है, ये जो एकांत हो गया ना, भेद में अभेद का विपर्यास हो गया, और देह और जीव भिन्न ही है, ये अभी कथनचित अभेद है, प्रदेश की अपेक्षा से दोनों अभिन्न है, क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों भिन्न नहीं है, एक क्षेत्रावगाह है, तो उनको सर्वथा भिन्न मानना ये भी विपर्यास है। तो स्यात भिन्न और स्यात अभिन्न मानने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान रहता है और वो नय सुनय कहलाता है, और अगर आग्रह पकड़ ले तो दुर्नय हो जाता है, और दुर्नय मिथ्या श्रुत ज्ञान के भेद भेदों में आता है, और मिथ्या श्रुत ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। स्वरूप विपर्यास रूपादयो निर्विकल्पा संति न संति विवाह, रूपादिक जो होते हैं विकल्प रहित होते हैं अथवा होते ही नहीं है, तदाकार परिणतम विज्ञानमेव, कुछ होता नहीं, सिर्फ अपन अपने ज्ञान से ऐसा सब जान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। न तदालंबनम वस्तु बाह्य मिति, और कोई ऐसी बाह्य वस्तु नहीं, सब माया है, कुछ है नहीं यहाँ पर, यानी वस्तु रूप से किसी का अस्तित्व न मानकर केवल ज्ञान की कल्पनाओं के रूप में ही सारे जगत को स्वीकार करना, ये स्वरूप विपर्यास है। एवं अन्य परिकल्पना भेदात दृष्टिष्ट विरुद्धात मिथ्या दर्शन उदयात कल्पयंती, इस तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष से विपरीत परिकल्पनाओं के भेद के कारण अन्य अन्य अनेक प्रकार के ये विपर्यास हो जाते हैं। अभी यहाँ पर तीन विपर्यास बतलाए उन्होंने, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। चेतन को अचेतन मानना, अचेतन को चेतन मानना, ये सब स्वरूप विपर्यास है। तो देखिए ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, इसको अगर अपन अप्लाई करें अपनी लाइफ में, जीवन में अगर अपन इसको लागू करके देखें, इस आंख से अगर अपन सब घटनाओं को घटते हुए देखें, तो फिर अपनों को कषाय आना बंद हो जाएगी। ये आगम चक्षु कहलाते हैं, इसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वो हर घटना में ये सब चीजें देखता है, कारण कार्य, स्वरूप, भेदाभेद, और तब उसको कषाय नहीं आती, उसको समझ में आ जाता है कि ये ऐसा है, मुझे मेरी इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हो रही, मैं तड़प रहा हूं, मैं बहुत आकुल व्याकुल हूं, परेशान हूं। तो जब वो इन दृष्टियों से विचार करता है, कारण के बारे में विचार करता है, तो आगम से समाधान मिल जाता है कि तुमने बहुत अड़चन डाली थी, तुमको याद दिलाए क्या 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 किया था तुमने, कोई अवधि ज्ञानी मुनि हो तो बता देंगे कि तुमने ऐसा किया था, और उनको बताने के बाद फिर इसको लग रहा है कि जो हो रहा है मेरे साथ ठीक हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, पर जब तक पता नहीं है तब तक लगता है कि अन्याय हो रहा है। बहुत समझने की बात है, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब आप जो भी नाम दो, लेकिन हम सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले किया था उसका हिसाब बराबर हो रहा है यहां पर, तो फिर आप चाहो चिल्लाओ या रो या हंसो या कुछ भी करो, वो चुकाना तो पड़ता ही है, जो आपने लोन लिया है वो रिटर्न तो करना ही होगा, बल्कि उसके उसके साथ रिटर्न करना होगा, क्या ब्याज बोलते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होगा। तो देखो अपन कॉमर्स या ऐसी चीजें कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर अपन फटाफट सब हिसाब किताब जोड़ लेते हैं, और लोक में जो व्यवस्था चलती है अर्थव्यवस्था, उसको भी अपन अच्छी तरह समझ लेते हैं, वहां पर अपन शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि है ही वैसे नियम है वहां के। तो फिर अपन ये कर्मों के नियम को न समझने के कारण यहाँ क्यों आकुल व्याकुल होकर शिकायतें करते हैं, समझने का थोड़ा पुरुषार्थ कर लें तो फिर जीवन में परिवर्तन आ जाता है। विपाक विचय ध्यान जिस दिन करने लग जाते हैं, देखो सीता जी कितनी आकुल व्याकुल थी जब श्री राम ने उनको वनवास दिया, तो रो रही थी, बिल्कुल बिलक बिलक के रो रही थी। तो जो जिन्होंने उनको संबोधन दिया, उन्होंने एक बड़ा अद्भुत वाक्य बोला कि तुम मिथ्या दृष्टि के समान क्यों रोती हो। तो फिर सीता जी को लगा कि अरे ये तो मेरा सहधर्मी भाई है, क्योंकि मैं भी जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव को स्वीकार करती हूँ, और इसने मिथ्या दृष्टि की बात की, इसका मतलब ये जानता है कि सम्यक दृष्टि जीव कौन है। बस फिर कुछ समय में सीता जी का मन शांत हो जाता है। बीच बीच में जरूर लगता है, अब क्या है कि अपने सर्वघाती कषाय उदय में रहती है, तो फिर उस वेदना तो उत्पन्न करती है वो कषाय, लेकिन फिर विवेक भी काम करता है तो उस वेदना को वो घटाता भी है, हटा नहीं पाता, घटा पाता है, क्योंकि सर्वघाती का मतलब सर्वघाती है, तो वेदना घट जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अगर अपन ये रखें, तो सम्यक दृष्टि को ये विपर्यास नहीं होते। ये विपर्यास कौन से ज्ञान में बताए जा रहे हैं? तीन ज्ञान में। वो तीन ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है। तो अगर मेरे अंदर ये विपर्यास है, मैं अगर अपने कर्म फल का दोषी किसी और को मानता हूं, तो फिर ये क्या हुआ? कौन सा विपर्यास हुआ? कारण विपर्यास हुआ, भेदाभेद विपर्यास हुआ, या स्वरूप विपर्यास? तीन में से कौन सा हुआ? कारण विपर्यास हुआ। तो जैसे ही ये बात समझ में आती है, तो फिर विवेक जागृत हो जाता है और फिर कोई दोषी नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि मैंने जो किताब लिखी थी उसी के पेज पढ़ रहा हूं मैं रोज। मैंने जो कहानी लिखी थी ना अपनी पिछले जन्म में, होश में नहीं लिखी थी। कोई नहीं लिखता होश में। कोई लिख सकता है क्या होश में कि परेशानी हो अपने ऊपर? तो बेहोशी में मैंने ऐसे ऐसे पन्ने लिख दिए कि जो बिल्कुल या तो काले हैं, अंधेरे वाले हैं, बिल्कुल परेशान करने वाले हैं। ये सब मैंने बेहोशी में मान लिए हैं कर्म। और फिर जब होश आता है तो फिर लगता है कि नहीं, अब क्या है कि ये किताब समाप्त नहीं हुई, उपन्यास तो मोक्ष तक के चलने वाला है। लास्ट चैप्टर तो मोक्ष है, तत्वार्थ सूत्र में भी और अपने आत्मा में भी। तो इसलिए यहां पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, और पुरुषार्थ अगर सम्यक हो गया तो फिर अपन निरंतर कल्याण की ओर ही बढ़ते जाएंगे। धीमी गति से बढ़ो या वेग से बढ़ो, पर अपनी दिशा कल्याण के ही अभिमुख होगी। तो इस तरह अन्य बहुत सारे ऐसे विपरीतताएं रहती है मिथ्या ज्ञान में। ततस्तन मत्य ज्ञानम श्रुता ज्ञानम अवध्यक ज्ञानम से भवति। देखो अवध्यक ज्ञान, यहां पर भी एको यणचि संधि का वही नियम लगा दिया। अवधि अज्ञान ऐसा शब्द प्रयोग। तो अवधि ज्ञान के कितने नाम हो गए? मिथ्या अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, कदवधि ज्ञान और अवध्यक ज्ञान, चार नाम हो गए। सम्यक दर्शन पुनस, सम्यक दर्शन पुनस तत्वार्थाधिगमे श्रद्धानम उत्पादयति। और सम्यक दर्शन तत्वार्थ के जान लेने पर श्रद्धान उत्पन्न करता है। ततस्तन मतिक ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम भवति। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये मिथ्या ज्ञान था और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, तो वो तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएंगे तत्काल। अब कोई प्रश्न करते हैं। आहा, प्रमाणम द्विप्रकारम वर्णितम। प्रमाण के दो भेद का आपने वर्णन किया। प्रमाण एक देशाश्च नयास तदनंतर उद्देश्य भाजो निर्देशव्य इत्यादाह। सूत्र में तो कहा था आपने प्रमाण नयैर अधिगमः, तो यहां तक तो प्रमाण प्रमाण का ही वर्णन करते आ रहे हैं। तो प्रमाण के जो एक देश होते हैं, अंश होते हैं, श्रुत ज्ञान के जो अंश होते हैं वो नय कहलाते हैं, तो उनका कथन करने योग्य है। इसलिए यहां पर अंतिम सूत्र कह रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र 33वां सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार अर्ज सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूता नयाः। सात नए होते हैं। इनमें से तीन द्रव्यार्थिक नए होते हैं, चार पर्यायार्थिक नए होते हैं। नैगम संग्रह और व्यवहार नए द्रव्यार्थिक हैं, और ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत नए पर्यायार्थिक है। पर्याय को विषय करने वाले पर्यायार्थिक कहलाते हैं, और द्रव्य को विषय करने वाले द्रव्यार्थिक कहलाते हैं। फिर नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र, ये चार नए अर्थ नए हैं, पदार्थ को विषय करते हैं, चाहे द्रव्य रूप में करें या पर्याय रूप में करें, लेकिन ये अर्थ नए हैं। पर बाकी जो तीन नए शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये तीन नए शब्द नए हैं, अर्थ नए और शब्द नए। अनभिवृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगम, काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उस कार्य के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम ने है। कश्चित पुरुषम परिगृहित परशुम गच्छन्तम अवलोक्य कश्चित पृच्छति, किसी कुलाड़ी ले जाने वाले मनुष्य को देखकर एक व्यक्ति प्रश्न करता है, किमर्थन भवान गच्छति थी, आप किस लिए जा रहे हैं कुलाड़ी लेकर के। स आह, वो कहता है प्रस्थ मानी तुम्हें थी, माप लेने जा रहा हूं। बोले वो माप लेने नहीं जा रहा है, लकड़ी लेने जा रहा है। कुलाड़ी लेकर कोई माप लेकर आता है क्या? लकड़ी लेने जा रहा है, बाद में उस लकड़ी से वो माप बनाने वाला है, लेकिन बोलने में क्या आया, माप लेने जा रहा हूं। तो इसको नैगम नय कहते हैं कि वो संकल्प को प्रधान करके वो लकड़ी किस लिए लेने जा रहा उसका नाम लेता है, लकड़ी लेने जा रहा वो बात की बात है, लक्ष्य क्या है वो बताता है। नासौ तथा प्रस्थम पर्याय सन्निध, वहां पर उसके कोई नापने वाली पर्याय उसके पास थोड़ी है। तद अभिनिवृत्त संकल्प मात्रे प्रस्तुत व्यवहार है, लेकिन उसकी रचना के प्रति उसका संकल्प होने के कारण वो नाम ले लेता है। जैसे बंदूक लेकर कोई किसी को मारने जा रहा है, शिकार खेलने जा रहा है, वास्तव में शिकार खेल नहीं होता, क्योंकि खेल में दोनों खिलाड़ियों को पता होता है कि ये खेल है, ये एक नियम है खेल का, कि खेल में हमेशा दोनों को पता होता है कि खेल है। लेकिन वहां तो उस जानवर को कुछ पता ही नहीं है, कोई उन शिकार करता है तो एक व्यक्ति पूछता है कि ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है, तो दूसरा कहता है कि ये नरक जा रहा है। ये नैगम ने, क्योंकि उसका जो संकल्प है उसको वहां पहुंचाने वाला है। निरपराध प्राणियों का वध करके व्यक्ति कौन सी गति का, कौन सी आयु का बंध बांध सकता है, तो ये नैगम ने। तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमानं कश्चित् पृच्छति, किं करोति भवान् स आह ओदनं पचामीति न तदौदन पर्याय सन्निहितः। ईंधन, जल, चावल वगैरह के दाने, इन सब को लेकर कोई कुछ पका रहा था, तो उससे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, बोलते हैं भात पका रहा हूँ। तो भात नहीं पका रहा कोई, भात भात है ही नहीं वहां पर, तो जो चीज है ही नहीं उसको कैसे पकाएगा। तो पकने के बाद भात बनने वाला है, पर फिर भी संकल्प होने के कारण उसको वैसा कह देता। एवं प्रकारो लोक संव्यवहारो संव्यवहार अनिवृत्तार्थ संकल्प मात्र विषय नैगम से गोचर, इस तरह से नैगम नय का ये विषय होता है। तो इसके बाद संग्रह आदि जो नयों का वर्णन है उसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अथ जैनम जयतु शासनम।